नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्पेसएक्स मिशन के तहत दो उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया के साथ भारत ने रचा इतिहास, यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश से ठंड में इजाफा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेसएक्स मिशन के तहत दो उपग्रह की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। अमरीका, रूस, चीन के बाद इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रह की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन आगामी वर्षों में देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को अविश्वसनीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के निर्बाध संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने जा रहा है और उससे पहले 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशियंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन।
मंत्रिमंडल ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी में परिवहन सुधार की दृष्टि से महत्वाकांक्षी ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों और कंपनी को समन्वय बनाकर कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने देहरादून में 3 नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मौके पर एनओसी जारी की और 31 जनवरी तक इन्हें सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक साबित होंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और स्मैक तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया जबकि दूसरा स्मैक की खेप लेकर फरार हो गया। घायल तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वहीं फरार तस्कर की तलाश की जा रही है। भारत स्टार्टअप इंडिया की आज 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रवर्तनकारी पहल ने पिछले 9 वर्षों में अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया और उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल स्टार्टअप में बदला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों ने कारोबारी सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया है, संसाधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की है और हर मोड़ पर स्टार्टअप का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की सफलता दर्शाती है कि आज देश गतिशील, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। इस दौरान वे जनसभाएं, रोड शो और पदयात्रा भी कर रहे हैं। वहीं प्रचार अभियान में निर्दलीय उम्मीदवार भी जुटे हुए हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल, हल्द्वानी और भवाली में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क कर मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जारी है। पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि नाटक मंचन के जरिए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
पूरी मतदान की प्रक्रिया को एक नाटक के माध्यम से एक पूरा डिपिक्ट किया है, लगभग 50 मिनट का। इसको हम लोगों ने एक इसकी संकल्पना रखी। उसके बाद डॉक्टर प्रयाग जोशी जी जो हैं, जो हमारे एक विद्यालय के शिक्षक भी हैं शिक्षा विभाग में, उनके द्वारा एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उसमें शिक्षकों के द्वारा मंचन किया गया इसका। तो इससे क्या है कि जो रियल टाइम जो स्थितियां बनेंगी उनको हमने अलग अलग प्रकार के बूथ की स्थिति, विभिन्न प्रकार के मतदाताओं की स्थिति इसको हमने दिखाया। किस प्रकार की अराजकता की भी स्थिति हो सकती है वो भी दिखाया। कब कहाँ कौन सा फॉर्म भरना है, क्या व्यवस्था रहनी है, इससे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनमें रुचि बढ़ी।
शिक्षक सीबी जोशी ने बताया कि इस तरह के प्रयास से पीठासीन अधिकारियों के साथ ही मतदान में लगे कार्मिकों को सहायता मिलेगी।
जो कक्षा कक्षा की हमारी परिस्थितियां होती हैं उसमें एक रोल प्ले मेथड है। तो जो ट्रेनिंग देने का यानी एंड्रागोगी यानी कि सीनियर को ट्रेनिंग देने को हम एंड्रागोगी कहते हैं। तो एंड्रागोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो स्थितियां हम लाए हैं इसमें जो हमें फेस करनी होती हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी उपादेयता है। मुझे लगता है कि हम बहुत लंबे समय से मतदान प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं और ट्रेनिंग ली है। ये ट्रेनिंग जो रोल प्ले वाली थी, ये हम लोगों के साथ साथ जो प्रशिक्षणार्थी लोग या जो पीठासीन अधिकारी और जो मतदान अधिकारी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उनके लिए एक अप्रतिम और नवाचार था।
उधर पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवत ने कहा कि मतदान स्थल पर नियुक्त होने वाले मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण एक साथ करवाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का संदेह ना रहे।
पहले चरण में हमने पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम को बुला के उनको ट्रेनिंग दिया था। तो आज की ट्रेनिंग में अगर उनके कुछ डाउट्स हैं तो उनको सॉल्व किया जा रहा है, और उनको उनका जो टीम है वो टीम बना के आज वो अपने टीम के साथ में मुलाकात कर लेंगे, और वो आपस में फिर जब उनको यहाँ से रवानगी होगी तो उस समय अपने मोबाइल नंबर्स वगैरह से आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी जबकि निचले हिस्सों में बारिश होने से तापमान में कमी आई है। चमोली जिले में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और देवाल नंदानगर क्षेत्र में बर्फबारी हुई। वहीं उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हरसिल घाटी में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई। उधर कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और पाला पड़ने के चलते सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिगत नमक और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। कुमाऊं आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को बर्फबारी से प्रभावित सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिए बर्फ और मलबा हटाने वाली मशीनों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेजा जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्पेडेक्स मिशन के तहत दो उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया के साथ भारत ने इतिहास रचा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर, और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले हिस्सों में बारिश से ठंड में इजाफा। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।